Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
श्रील प्रभुपाद की, श्री छठिकरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। कौमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हमारे यात्रा में बिना ज़्यादा विचार किए हुए भी, योजना किए हुए थिंग्स अपने आप ही हो रही हैं। जैसे आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर 1977 इस दिन में हमारे प्रिय परम गुरुदेव, हमारे गुरुजी के गुरुदेव दिव्य कृष्ण कृपाश्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, इनका आज के दिन श्री वृंदावन धाम में तिरुभाव हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने वृंदावन में अपने घर में अपने शरीर को त्याग दिया था और आज ही के दिन हम वृंदावन आए हैं और आज ही के दिन हम उसी जगह पर जाएंगे, उसी बिस्तर के पास जाएंगे जिस बिस्तर पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो वो सारी कहानियाँ मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊँगा, लेकिन बहुत ही, ये सोमवार के दिन हम लोग आशेश्वर महादेव पहुँचे थे नंदगांव में। भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग अपनी कुछ योजना बनाते हैं और भगवान की अपनी योजना रहती है, जो हमारी योजना से कई गुना बेहतर होती है। हम लोग कल एक प्लान बनाते हैं अपना, लेकिन यहाँ पर होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। जो भगवान को आप पर बेस्ट कृपा करनी है वो हमारे प्लान के आगे जाकर भगवान कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम बहुत इस सुंदर रमणीक स्थान पे आए हैं, आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, वृक्ष कदम का कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को, आप केवल ब्रज में मायापुर में मिलेगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, कदम के वृक्ष भी इतने विशाल नहीं होते हैं, कई कई जगह होते हैं, सब जगह नहीं होते हैं। जैसे कालिया घाट पे एकदम विशाल कदम का पेड़ है, अद्भुत पेड़ है। हमारे हॉस्पिस के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा आज पेड़ कैसे होते हैं। पेड़ इतने बड़े तमाल के वृक्ष हैं उधर, जो मैंने कई ब्रिज में कहीं देखे नहीं हैं। वो हमारे बिल्डिंग के अंदर हैं, दो हैं, पहले चार थे, दो अभी गुजर गए। तो कदम का वृक्ष जो है वो राधा रानी का प्रतीक है, स्वयं राधा रानी। और तमाल का वृक्ष जो है वो कृष्ण का प्रतीक है। जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे वृंदावन को मथुरा, तो सब गोपियाँ तमाल के वृक्ष को गले लगा कर रोती थी कृष्ण की याद में, क्योंकि तमाल का वृक्ष जो है सांवले रंग का होता है, डार्क, और ये लाइट रंग का होता है। ऐसे कल्प वृक्ष हैं सभी ये, एक तो कल्प वृक्ष हैं, या तो संत लोग इसमें इस रूप में भजन कर रहे हैं, या तो ये स्वयं राधा रानी है। इसलिए आपको जब भी वृक्ष दिखेंगे वृंदावन में, उनको गले लगाइए और गले लगाकर प्रार्थना कीजिए, भक्ति की याचना कीजिए। हाँ, इन पेड़ों को स्पर्श करके गले लगाने को मत भूलना आप, क्योंकि ये धाम के आधार स्तंभ है, और धाम के चेतना को बनाए रखने में इन वृक्षों का बहुत बड़ा हाथ है। दे मेंटेन द स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ऑफ द धाम। वृक्षों के बिना धाम बेकार है, क्योंकि सारी धाम की जो दिव्य चेतना है, लीलाओं का अवलोकन करते रहते हैं, और वो जो देख रहे हैं उनकी चेतना होती है, वो चेतना वो ग्रहण करते रहते हैं निरंतर। और कल भी आपने मदन मोहन जी के शब्द में सुना ना कि यहाँ पर लीला हुई थी ये नहीं है, यहाँ पर लीला होती रहती है हमेशा। ये मत सोचना कि इतिहास की बात है, इतिहास भी है, लेकिन यहाँ वृंदावन धाम में नित्य लीला चलती रहती है। जब हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा हृदय कपट से मुक्त हो जाएगा, द्वेष से और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाएगा ना, और केवल शुद्ध भावना प्रेम की हमारे हृदय में रहेगी, तो हमको ऐसे, मैं अभी देख रहा हूँ तो वैसे आपको दिखाई पड़ेगा जो हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने भजन किया है, और ऐसी बहुत सारी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है जो भागवत में भी नहीं है, गर्ग संहिता में नहीं है, और किसी भी ग्रंथ में नहीं है। तो कहाँ से प्रकट हुई लीला वो सब? क्योंकि वे इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनको रोज के अपने भजन में, हृदय पटल में वो सब लीलाओं का दर्शन करते थे। वो जैसे मान मंदिर में जो लीला हुई ना, राधा रानी रूठ गई और कृष्ण ने उनको चरणों में दंडवत किया, अपना मोर मुकुट चरण में रखा। तो हमारे 8वीं सदी में एक संत हुए हैं गौड़िया, जयदेव जी महाराज, जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीत गोविंद का लेखन किया है। अभी वो बैठे हैं मायापुर में, नवद्वीप धाम में, चंपाहटी में बैठे हैं, वहां पर उनकी कुटिया है, वहां पर वो लिख रहे हैं। तो ये प्रसंग जो है वो लिख रहे हैं। अभी उधर से, उधर के कहां से पता चला उनको? पता चला ऐसे क्योंकि दृष्टि के सामने वो लीलाएं हो रही है, जो भी गीत गोविंद में लिखा गया है वो सब कुछ वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं उसको काव्य रूप में लिख रहे हैं। तो सूरदास जी तो अंधे हैं, वो तो पढ़ भी सकते नहीं कुछ। तो सूरदास जी जो है वो, उन्होंने 73 साल उधर चंद्र सरोवर के किनारे में निवास किया है, और जो सूर सारावली, सूर सागर जितने भी ग्रंथ हैं उनके, 6 बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके, केवल उनके अभंगों के, मतलब भजनों के। तो उसमें ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है कि कहीं भी वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन विस्तार रूप में वर्णन करते हो, विस्तार रूप में, क्योंकि वो साक्षात उन लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। और जो दर्शन करते हैं उसको काव्य में उतारते हैं या पद्य में उतारते हैं। जैसे कल मैंने आपको लीला बताई ना कि वो रासलीला हो रही थी, उसमें दो बच्चों को राधा कृष्ण बनाया था और कृष्ण बलराम राधा कृष्ण को बनाया था, और वो बच्चे आवेश आकर गायब हो गए। फिर वो उनके जो पालक हैं मतलब माता पिता के बहुत झगड़े उनके साथ में, फिर वो रो रो के तपस्या, उन्होंने भजन किया, फिर राधा कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने वहाँ पर बच्चों को वापस दे दिया उनको। ये लीला बहुत पहले हुई है, लेकिन ध्रुवदास जी नाम के सत्य संत हुए हैं, उन्होंने इस लीला का दर्शन किया है और उसका पूरा वर्णन कविता में लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, ये प्रेम हमारे अंदर ही है, लेकिन जब वो प्रेम हम जागृत करते हैं, जैसे हम कोयले पर जो फूंक लगाते हैं ना नली से, तो क्या होता है वो राख जो है उड़ जाती है और अंदर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है ना। अग्नि तो अंदर ही है वो, लेकिन दबी हुई है। जब हम लोग नली से उसको फूंक कर देते हैं तो फिर वो दो चीज़ें होती हैं, एक राख उड़ जाती है, राख उड़ते ही अग्नि अंदर से जो है ऊपर आ जाती है। तो हम सबके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन ऊपर इतनी गलत विचारधाराएं राख की तरह जमा हो गई है कि उसमें वो अभी न के बराबर है, वो लगता ही नहीं कि कुछ है अंदर, लगता है अग्नि नहीं है, सूखा हुआ कोयला है। लेकिन जैसे ही चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, जैसे भगवान का नाम लेंगे, हम बार बार क्यों टोकते हैं आपको, नाम लो नाम लो, आपको लगता हो क्या प्रभु जी, एक स्कूल टीचर की तरह हमेशा डंडी लेके करो 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 करो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नाम नाम जो है वो साबुन की तरह है। वो साबुन जब आत्मा पर घिसेंगे ना आप हरि नाम का, तो सारे जो उसमें राख जमी हुई है, कलमश गंदगी, वो सब साफ हो जाएगी और चमकेगी हमारी आत्मा, और वो आत्मा से फिर क्या प्रकट होगा, भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा, क्योंकि अंदर है वो, हम लोगों ने अपने विचारधाराओं से दबा के रखा है उसको, हमारे कर्मों से, हमारे अलग विचारधारा से। कोई सोचते हैं भगवान निराकार है, कोई बोलते हैं भगवान बिंदु है, कोई बोलते हैं भगवान ये है भगवान वो है, ऐसी गलत विचारधाराओं से भी हमने दबा के रखा है। फिर हमारे जो निगेटिव भाव है ना, पाप करते हैं हम लोग, फिर वो किसी के प्रति ये गंदा आदमी है, वो बुरा आदमी है, वो हमारा दुश्मन है, ये शत्रु है, ये मित्र है, इस प्रकार के जो धारणाएं हैं वो सब राख की तरह है, वो आत्मा के ऊपर निखारा जो है उसके ऊपर अग्नि को दबा के रखा हुआ है। और भगवान का नाम लेने से फिर वो सब राख नष्ट, जो मैल है वो सब नष्ट हो जाएगा, और फिर अंदर का जो स्वतः है, स्वयं स्फूर्त जो प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा। और जब वो प्रेम प्रकट हो जाएगा तो वो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उस प्रेम की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो संत लोग ऐसे प्रेम की दृष्टि से हृदय में हमेशा श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते ही रहते हैं, सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं। और केवल संतों का भाग ही नहीं है कि वो संतों के ही जिम्मे ये कार्ड दे के रखा है, नहीं, हम सब लोग वो प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हम भी वैसे ही अनुभव करेंगे। महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रक्रिया है, जो प्रोसेस जो आपको दी गई है, उस प्रक्रिया को कौन कितने हद तक अपनाएगा उतने हद तक उसको परिणाम मिलेगा। ये कथा भी चल रही है, कौन कितने हद तक एकाग्रता से उसको श्रवण करेगा और ग्रहण करेगा उतना उसके हृदय में परिवर्तन होगा। मराठी में क्या कहते हैं, व्यक्ति तित्क्या प्रकृति, जितने लोग उतने प्रकार के उनका स्वभाव होता है। तो जब वर्षा होती है तो कोई छतरी खड़ा है, कोई टोपी पहन के खड़ा है, कोई छाया में खड़ा है, कोई शेड में खड़ा है, तो वर्षा कैसे होती है, एक समान होती है। लेकिन जैसे हम रहेंगे वैसे भीगेंगे, जैसे हमारा रुख है भावना का, उस तरह से कृपा का वर्षा सब पे होते रहता है। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं, समय सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों से उनका एक ही प्रकार का भाव है, राक्षस हो या देवता हो या भक्त हो या कोई जीव हो, सब पर समान कृपा की वर्षा करते हैं। लेकिन कोई ग्रहण करता है या कोई उल्टा पात्र लेके खड़ा है तो क्या होगा, उसका कृपा वेस्ट हो जाएगी, और जो उन्होंने ऐसा रखा है वो सब ग्रहण करेंगे उसको। ये सब हमारे ऊपर है, भगवान सबको कृपा देते हैं, तो सब पर वो कृपा वर्षा कर रहे हैं, सबको सत्संग दे रहे हैं, सबको सत्संग का मौका दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, आइए मेरे धाम में आइए, मेरा नाम लीजिए, वापस लौट के चलेंगे, फिर गौलोक धाम में आनंद करेंगे, चलो चलो दुनिया को छोड़ के चलो। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, है ना। तो ये सब बातें इस वृक्ष से निकली थी। तो वृंदावन के वृक्ष जो हैं वो बहुत ही पवित्र व्यक्तिमत्व हैं, व्यक्ति विशेष। इनके सान्निध्य में बहुत अधिक आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है, इसलिए हम पेड़ के सहारे बैठते हैं हमेशा। और यही पेड़ मैंने कुछ जाके बंबई में लगाया भक्ति वेदांत में, लेकिन यहां पर जो दर्शन उनका है वैसा वहां पर नहीं होता है। ये धामवासी है, धामवासी संत लोग यहाँ पर प्रार्थना करके यहाँ पर वृक्ष का जन्म लेते हैं और निवास करते हैं और चिरंतन लाखों लाखों सालों तक, कभी हजारों सालों तक, कभी सैकड़ों सालों तक निवास करते हैं, भजन करते हैं। तो आइए छठी करा आ गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि छठी करा इसका वैसे नाम जो है संस्कृत का वो षष्ठी करा है और एक नाम है शकटी करा। उसका कारण यह है कि आपको याद होगा नंदगांव में मैंने बताया आपको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वेकअप कॉल था मेरे लिए, आपके लिए। तो नंदगांव में मैंने कथा में बताया था कि 6 महीने तक कृष्ण जन्म उत्सव चलता रहा, तो जन्म के बाद में छठवां दिन जो है वो मिस हो गया। 1 साल का जन्मदिन का जब समय आया तो 1 साल का जन्मदिन का उत्सव षष्ठी पूजन किए बिना संपन्न नहीं हो सकता है। तो यशोदा मैया ने जल्दी जल्दी में इस क्षेत्र में आकर षष्ठी देवी का पूजन करके कृष्ण का षष्ठी पूजन किया। ये हमारे पेपर में आता ना वो छठ पूजा यही है वो, लेकिन वो एक कॉमन पूजा होती है, लेकिन हर जन्म के पश्चात 6 दिन के बाद में एक पूजन होता है, उसको कुआं पूजन भी कहते हैं यहाँ पर, कुआं पूजन। अपने इतने संस्कार है हमारे देश में, हम भी सुनकर हैरान हो जाते हैं, संस्कारों से भरा हुआ देश है ये। संस्कार के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं बनता है। हाँ, जन्मना जायते शुद्रा संस्कारात भवेत द्विजा, बराबर है श्लोक, कलौ शुद्रो संभवा। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य है। हम सब लोग बिना संस्कार के जन्म लिए हुए, हमारे माता पिता ने हमारे समय पर गर्भवती होने के पहले कोई संस्कार नहीं किया था, ऐसे ही हो गया हमारा जन्म, हमारा गर्भ आ गया, हमारा जीव गर्भ में धारण हो गया। लेकिन हमारे संस्कृति में जन्म के पहले भी संस्कार होता है, मतलब गर्भधारणा होने के पहले भी संस्कार होता है। इसलिए पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा को क्षत्रिय बालक होता था, ब्राह्मण बालक को ब्राह्मण बालक होता था, ब्राह्मण व्यक्ति को, वैश्य को वैश्य बालक होता था, और जो बिना संस्कार के होते हैं वो सबको शूद्र माना गया है, क्योंकि शूद्रों के जन्म के पहले संस्कार नहीं होता है, पर हमारा किसी का नहीं हुआ है। इज इक्वल टू कलौ शूद्रो संभवा, हमारा सब जन्म से हम सब शूद्र है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जन्म के बाद में हमारे संस्कार होते हैं तो हम द्विज यानी ब्राह्मण पद तक पहुंच सकते हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, भगवान ने ये 4 वर्णों का निर्माण जो किया है वो जन्म से नहीं किया है, जन्म भी है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्म से है। किस प्रकार का कर्म हम करते हैं, किस प्रकार की हमारी चेतना है, किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार की धारणा रखते हैं हम। हाँ, तो ये संस्कार बहुत आवश्यक है। तो वस्त्र पहनने का संस्कार, बोलने का संस्कार, वरिष्ठों को देखकर प्रणाम करने का संस्कार, फिर जात संस्कार, नाभि संस्कार, नामकरण संस्कार, और उसमें पहले गर्भाधान संस्कार, फिर गर्भ संस्कार में सीमंतोनयन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार ब्रह्मोपदेशम, उसके बाद विवाह संस्कार, कितने प्रकार के दीक्षा संस्कार जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करते हैं। जन्म से हम शुद्र हो सकते हैं लेकिन जन्म के बाद में जब संस्कार होते हैं तो हम द्विज हो जाते हैं, ट्वाइस बॉर्न, और फिर विप्र बनते हैं ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, बहुत ज्ञान प्राप्त करने पर विप्र पद को प्राप्त करते हैं। और जब विप्र को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान की अनुभूति होती है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई है कि ब्रह्म कौन है और हम कौन हैं, हमारा और ब्रह्म का रिश्ता क्या है, ये जिसको समझ में आता है वो उसको ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मण के परे वैष्णव है, ब्राह्मण के परे वैष्णव है, भगवान की दृष्टि से वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो जरूरत पड़ने पर प्रवचन भी देगा, जरूरत पड़ने पर संडास भी साफ करेगा, जरूरत पड़ने पर व्यवहार भी करेगा और जरूरत पड़ने पर शासन भी करेगा। एज द नीड कम्स ही विल डू। लेकिन ब्राह्मण अपना ही काम करेगा, क्षत्रिय अपना ही काम करेगा, वैष्णव बनने के बाद वो जो जरूरी उस समय है वो काम करेगा। इसलिए वैष्णव जो है वो भगवान का हृदय जीतने वाला पद है, तो हम सब लोगों को वैष्णव बनना चाहिए। ये बेकार का तर्क और वो क्या वर्ड जगलरी, शब्दों का खेल, यहाँ वहाँ फिलोसॉफिकल डिस्कशन, कहीं भी हमको नहीं पहुँचाएगा। वो केवल प्रेम ही और भक्ति भगवान के पास पहुँचाएगी, बाकी सारी बातें जो भगवान के नाम पे होती है ना, वो इधर उधर भटका देगी हमको, लक्ष्य से हमको दूर हटा देगी। इसलिए जब वैष्णव हम वृंदावन धाम में आते हैं ना, तो केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के चरण, भगवान के चरण और उनकी सेवा। इसी की प्रार्थना करनी चाहिए, इसी का चिंतन करना चाहिए, तो हमारा सारा जीवन जो है ना वो धन्य हो जाएगा। इसलिए अभी हम विशेष कोशिश कर रहे हैं इन अग्निहोत्रों के माध्यम से संस्कारों के बारे में प्रचार करने के लिए, कि सब लोग भूल गए। अभी विदेश जाते हैं कमाने के लिए तो विदेश में कुछ भी नहीं होता है। अरे बच्चों को पता नहीं गणपति कौन है और देवी कौन है, शेरा वाले कौन है, सिंह वाले कौन है, कोई पता नहीं है उनको। वहाँ पर क्या है, कुछ है ही नहीं, उधर बंजर भूमि है वो, मतलब एक प्रकार से बंजर भूमि है। यहाँ तक आपको पता नहीं, जो इंग्लैंड में जाते हैं उनको पता नहीं होगा, यूरोप में वहाँ पर जो पानी पीते हैं, जो लैट्रिन में छोड़ते हैं, उसी का रिसाइकल करके पीने के लिए वापस आता है वो, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती, पानी नहीं है वहाँ पर। एक नदी है पूरे यूरोप में थेम्स नाम की। अरे हमारे यहाँ पर तो जाएंगे ना मुंबई से केरला, तो आधा आधा घंटे में एक नदी आएगी इतनी बड़ी समुद्र की तरह। मैंने गिना एक बार, मैंगलोर से केरला तक 28 नदियाँ आई, 28, वो भी ऐसे ऐसे नहीं कि वैसे कूट रही है, ऐसे एकदम एक लाइन चल रही है इतने समुद्र की तरह। तो फिर लोग संस्कार को भूल रहे हैं, यहाँ से गोस्वामी लोग फिर अमेरिका में बस रहे हैं, तो उनके बच्चों को क्या पता है। तो हमारा हमारी आवश्यकता, अगर हम लोग अगर प्रचार नहीं करेंगे, जागृति नहीं करेंगे, तो हम सब आप सब ये सब भूल जाएंगे। क्या है हमारा, हमारा क्या इतिहास क्या है, हमारी नींव क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस देश के महान जीव हैं, सब भूल जाएंगे हम। इसलिए संस्कार करना जरूरी है। ये देवता कौन है, ये भगवान कौन है, ये जानना जरूरी है। ये संस्कार क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या है, ये सबका बहुत गहरा अर्थ है, जीवन को समृद्ध करने वाला अर्थ है इसके अंदर। तो हम लोगों को अभी अपनी संस्कृति को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को कुत्ता बिल्ली की तरह जीना नहीं चाहिए। कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं, दिन भर खाना ढूंढते हैं, पेट भर गया फिर मादी नर ढूंढते हैं, नर मादी ढूंढते हैं सेक्स करने के लिए, थक गए तो सोने का जगह ढूंढते हैं, और कोई आक्रमण करेगा तो सुरक्षा का प्लान सोचते हैं, क्या कहाँ भाग जाएं। जन क्या आहार मुद्रा, आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। और हम भी अगर वही आहार के लिए मेहनत करेंगे, विरार चर्च गेट तक यात्रा करेंगे, यहाँ से पुणे जाएंगे, पुणे से नासिक जाएंगे, वहाँ से आएंगे घर में आके फिर भोग करेंगे, पैसे को रखेंगे एफडी में लॉक करके किधर सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा अलग तरह की है ना, कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं, लेकिन सुरक्षा का प्रिंसिपल वही है। हमको उससे ऊपर उठना है, और उसके ऊपर उठने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। बिना संस्कार के आदमी की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे संस्कारों में, हमारे श्लोकों में, वेदों के मंत्रों में, पुराणोक्त वेदोक्त मंत्रों में इतनी शक्ति है। जिन लोगों ने यहाँ पर अभी हमारा यज्ञ अटेंड किया, हम तो बड़े पंडित वगैरह तो है नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप मुझे दिल से बताइए कैसा अनुभव रहा आपका। ऐसे ना मैं खुद भी उसको वर्णन नहीं कर सकता, जो मुझे क्या अनुभव होता है उसमें, वो आत्मा का अनुभव होता है, उसमें शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उसमें क्या लगा। क्योंकि साक्षात जिन लोगों को हम पुकार रहे हैं ना, वो स्वाहा करने के लिए, भीष्म देवा या स्वाहा, वो ऐसे अनुभूति होती है कि वो आ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं हमारी भावनाओं को। जितनी भावना आपकी तेज है उतना वो आते हैं, उनकी सान्निध्य का अनुभव होता है। अभी ये जो अनुभव होता है उसको हम झूठा कैसे साबित करें, जो अनुभव है वो अनुभव है। अगर प्रेम का अनुभव किया तो प्रेम को कैसे हम बोलेंगे नहीं है, प्रेम नहीं है, कैसे डिफाइन करेंगे आप, कैसे प्रूव करेंगे। प्रेम तो प्रेम होता है, हृदय की भावना है वो। एनीवे, संक्षेप में ये सब विषय निकला था षष्ठी पूजन से कृष्ण के। अभी कृष्ण भगवान है वो, उनको क्या संस्कार की जरूरत है, लेकिन भी किए जा रहे हैं। फिर भी यज्ञ किया गया शांडिल्य मुनि के आदेश के द्वारा, 18,000 कोटि गोपाल मंत्र को आहुति दी गई, तब नील तेज प्रकट हो गया और नंद महाराज के हृदय में और बाद में यशोदा माता जी के हृदय में और गोद में बस गया वो। तो भगवान ने भी क्या दिखाया, जरूरी है सब कुछ, ये यशोदा माँ ने भी दिखाया जरूरी है। फिर वो गोकुल गए, अपना मथुरा गए और देवकी वसुदेव को मिले, तो क्या कहा देवकी वसुदेव ने, तुम्हारे बहुत सारे संस्कार करने बाकी है जो हम संकट के वश कर नहीं पाए कंस के भय से, अभी तो करना है पूरा उसको, तो गुरुकुल भेजना है, विद्यादान देना है, गुरु की दक्षिणा लेनी है। तो भगवान 64 दिन उज्जैन में रहे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, उनको क्या पढ़ने की जरूरत है क्या, हाँ सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिम ज्ञानम अपौनहंच, सब ज्ञान के श्रोता भगवान है ना, उनको क्या जरूरत है गुरुकुल। लेकिन फिर भी वो जब मनुष्य का अवतार लेते हैं तो सारे नियमों का पालन करते हैं। राम भगवान ने भी वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी, सभी लोगों ने की है। भगवान बताते यहाँ पर आकर कैसे जीना है आपको और कैसे उसको जीवन को जी के मुझे मेरी प्राप्ति करनी है। तो इस जगह पर यशोदा माई ने षष्ठी पूजन कृष्ण का किया है। फिर वो जैसे पहले नंदगांव में थे, उधर आतंक हुआ राक्षसों का और फिर बालक भी नहीं प्राप्ति हो रही थी, इसलिए वो गोकुल आए यमुना किनारे रहने के लिए, क्योंकि यमुना किनारा भगवान के आशीर्वाद से, जहाँ जहाँ यमुना किनारा है, जहाँ जहाँ गंगा किनारा है, वो सब पवित्र क्षेत्रों में उसकी गिनती है, तीर्थ में गिनती होती है। तो उनको लगा इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर हमें यमुना किनारे जाके निवास करना चाहिए। तो यमुना किनारे निवास करते हुए फिर उनको कृष्ण बलराम की प्राप्ति हुई, विष्णु महाराज को राधा रानी की प्राप्ति रावल में हुई, वो यमुना किनारे में है। लेकिन क्या हुआ, बहुत संकट आए उनके बाद में, जन्म होते ही 6 दिन में आई पुतना, सुंदर स्त्री बनकर आई, कमल लेकर ऐसे घूमते घूमते लगता है कि वैकुंठ की लक्ष्मी आ रही है, ऐसा लोगों को लगा उसके रूप को देखकर। फिर शक्टासुर आया, फिर तृणावर्ता आया, बहुत सारे राक्षस आए, और किसी कोमल से सुंदर से बालक के ऊपर इतना अगर किसी का ध्यान है मार देने के लिए, तो माता पिता का कैसे स्थिति होगा ना, पता नहीं कौन आज मारने को आएगा, कोई विष पिला रहा है, कोई आकाश में उड़ा के लेके जा रहा है, कोई गिर रहा है उसके ऊपर, कितनी भयंकर स्थिति आप सोच सकते हैं कि हमारे घर में कोई बालक होगा और एक बड़ी सेना चक्रवर्ती सम्राट की आपके बालक को मारने के लिए तुली हुई है, तो क्या आप शांति से सो सकते हैं क्या। तो 84 खंभा में डिस्कशन हुआ उपनंद बाबा और सब बाबाओं का कि अभी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह भी सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि कंस जो है ना वो केवल जमुना के पार है, एक जमुना पार किया तो हम लोग का घर आता है, कितना आसान है पहुँचने के लिए यहाँ पर कृष्ण को मारने के लिए। तो यहाँ से अब चले जाएंगे वापस अपने घर लौट के जाएंगे। तो उन्होंने फिर ना अपना सारा जो राज्य था जो बसाया हुआ था वो बैलगाड़ियों में भर दिया, मतलब सारा सामान वामान जो भी था, इतने सारे लाखों गायें बछड़े कंधों पर लिए, हाँ कुछ बैल के गाड़ियाँ थी उसमें रानियों को सब बिठाया, बुजुर्गों को बिठाया, और उनका कारवां चलना शुरू हो गया गोकुल से और रावल से, रावल से ब्रजभानु महाराज का कारवां और गोकुल से नंद बाबा का कारवां। तो फिर वो छटिकरा में आके रुके हैं और कई महीने यहाँ रुके हैं। तो जब आए यहाँ पर वो छटिकरा के एरिया में, तो उनके पास इतने अनंत बैलगाड़ियाँ थी, उन्होंने जहाँ तंबू लगाया, अपना टेंट लगाया, मतलब अपना एक रेसिडेंस बनाया, उसका जो बॉर्डर है वो पूरा बैलगाड़ियों से सजाया, और वो बैलगाड़ियाँ इस तरह लगाई कि वो चंद्राकार लग गई, इसलिए उनका नाम है शकटकर, जहाँ पर चंद्राकार शकट यानी बैलगाड़ियाँ लगाई गई और उनके तंबू की बॉर्डर बनाई गई, उस जगह का नाम है शकटिकर। और एक विशेष बात आप देखिए, ध्यान से सुनिए, नंद बाबा ने अपना तंबू छटिकरा में लगाया, वृषभानु महाराज ने तंबू बासोती गांव में लगाया, वो राधा कुंड से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है, और हम लोग जब आए ना तो राधा कुंड रास्ते में आया था और 28 किलोमीटर यहाँ से दूर है वो। लेकिन वर्णन ऐसा आया है कि नंद बाबा का और वृषभानु महाराज का तंबू एक दूसरे को लगे हुए थे, इसका मतलब क्या होता है, इतने विशाल तंबू थे वो। एक का केंद्र बिंदु बसोती गांव में है यहां से 28 किलोमीटर, और दूसरे का केंद्र बिंदु छठीकरा में है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मिले हुए जैसे लक्के ही थे वो, बहुत सर्कल सा टचिंग इच अदर। और मुझे अभी भी याद है जब मैं वृंदावन में पहले आया था तो मुझे बताया गया था कि वृंदावन से राधा कुंड के तक, राधा कुंड तक इतना घना जंगल था कि कोई भी सूर्य का किरण जमीन पर टच नहीं करता था। अपने मंदिर से, कृष्णा बलराम इस्कॉन मंदिर से लेकर पूरे राधा कुंड तक इतना घना अंधेरा हुआ करता था, दिन में, भरे दिन में। इतनी सघन वृक्षावली थी, नॉट अ सिंगल रे ऑफ सन वुड टच द ग्राउंड। और वो सारा नंद बाबा का और ऋषिवानु महाराज का तंबू था। वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर निवास किया है, वहां से कृष्ण ने गैया चराई है, फिर नंदगांव जाकर भी यहाँ पर आकर रास रचाया है, गौचारण किया हुआ है। तो छठीकरा भगवान के रासलीला की, गौचारण की भी जगह है। एक बार भगवान का नाम पुकारेंगे सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि एक सुंदर मनमोहक घटना यहाँ पर हुई है छठीकरा गांव में। बहुत सारी घटना हुई है, इसमें एक सुंदर घटना ऐसी है कि जब छठीकरा से ये तंबू उठा और वो आगे बढ़ने लगे, यहाँ से आगे वो काम्य वन गए हैं, जहाँ पर हम जाके आए ना वहाँ पर भी उनका राज्य बसा हुआ था, वहाँ पर भी 84 खंबा, नंद भवन सब कुछ है वहाँ पर। और नंद भवन 84 खंबा और वो काम्य वन का निवास होने के बाद वो नंदगांव आए हैं कृष्ण को बड़े गायों की जिम्मेदारी देने के पहले, यानी गोपाष्टमी के उत्सव के पहले, यानी भगवान की 5 साल उम्र होने के पहले वो नंदगांव में आके बसे, और फिर वहाँ पर भगवान को बड़े गायों का जिम्मेदारी दिया गया। तो जब यहाँ से निकले तो वापस सब बैलगाड़ी में सामान डाला, फिर सब लोग सबको बिठाया, तो यशोदा रानी मखमल के चादर पर बैलगाड़ी के ऊपर कृष्ण को गोद में लेकर चल रही है, रोहिणी मैया वैसे ही मखमली बैलगाड़ी में बैठकर बलराम जी को लेकर चल रही है गोद में, और बड़े गोपियां रथ में बैलगाड़ी में बैठे हैं शकट पे, तर जवान गोपियां चल रही हैं, ग्वाल बाल बछड़ों को कंधे पर लेकर गैया को चरा के चला के चल रहे हैं, ब्राह्मण वृंद श्लोक का गायन कर रहे हैं, बच्चे लोग वो बैल होता ना वो बफेलो हॉर्न पुंगी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब बड़ा सुंदर माहौल था। तो एक वृद्ध गोपी थी 105 साल की, सब लोग सुन रहे हैं ना, तो उसके मन में आया कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, यशोदा माई के गोद में बालक कृष्ण जो है वो विराज रहे हैं। उसके मन में एक सहज भाव आया कि कितना अच्छा होता अगर मेरे गोद में होते। ईर्ष्या नहीं कर रहे वो, कोई एनवी द्वेष नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि अगर मैं भी उस बैलगाड़ी में कृष्ण को गोद में लेकर चलती तो कितना आनंद आता। लेकिन वो सोचते हैं मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मतलब उम्र से बड़ी है, लेकिन मेरा क्या पद है, मेरा क्या पोजीशन है, मेरा क्या अधिकार है उससे। ठीक है, फिर ऐसा विचार आया मन में और चलती रही वो। लेकिन कृष्ण भगवान जो है, जिसके मन में प्रामाणिक इच्छा होती है, आप इधर उधर मत देखना, इधर से लोग आते जाते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होना, कथा में एकाग्रता होगी तो सार आपको ग्रहण कर सकते हैं आप। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण वो उन्होंने बोल के छोड़ दिया, कृष्ण ने जाना कि इसके हृदय में ऐसी इच्छा है, और कारवां चलता गया। कुछ देर बाद कृष्ण ने अपने माता से वार्तालाप शुरू किया, नन्ना सा बालक है ना वो, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। तो वो बालक जो गोद में बैठा है वो पूछ रहा है, माथे ये क्या है? तो माता ने कहा मोर है। तो मोर के बाजू में कौन है? बोला मोरनी है। कौन लगती है मोरनी मोर की, ऐसा कृष्ण पूछ रहे हैं। तो मैया ने कहा मोर की पत्नी है मोरनी। तो हिरण को देखा, बोला मैया ये क्या है? तो मैया ने कहा हिरण है। उसके बाजू में कौन है? वो हिरनी है। वो कौन लगती है उसकी? वो तो बीवी लगती है उसकी। फिर कोयल को देखा, मादा कोयल और क्या नर कोयल, नर कोयल को ये कौन है? कोयल ये कौन है? कोयल कोयल मतलब हमारी मराठी में कोकिला। वो कौन लगती है उसकी? वो तो बीवी लगती है उसकी। ऐसे ना जितने भी जानवर और पंछी मिले सबके बराबर भगवान की दया से सब जोड़ी में ही घूम रहे थे वो दिन। हाँ पति पत्नी प्रेम से। एक यहाँ पर ब्रज में ना इतना बड़ा पक्षी है, इतना बड़ा, हाँ मतलब उसका वजन कम से कम 70-80 किलो होगा, इतना बड़ा। और वो नहीं शाहमुख नहीं, वो यहाँ का विशेष पक्षी है, और वो पक्षी आपको बहुत दुर्लभ मिलेगा देखने के लिए। बहुत जंगल में जाएंगे ना आप, एकांत में जहाँ पर कोई मनुष्य बस्ती नहीं है, वहाँ पर वो नर मादी जोड़ा जो है ना साथ में घूमते रहते हैं, और कभी भी वो जुदा नहीं होते कभी भी, और मनुष्यों को देखकर भागते हैं। तो ऐसे सारे पक्षियों का दर्शन किया जो जोड़े में घूम रहे उस दिन भगवान की इच्छा से। और सबका जवाब ये तीन प्रश्न पूछे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन लगती है उसकी, वो तीन प्रश्न के सेम सेम उत्तर माता देती गई। माता भी परेशान है, क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सब पति पत्नी पति पत्नी, ये कौन है, ये कौन है। और सबका पूछ के होने के बाद में अचानक बिना मतलब के कृष्ण रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे। तो मैया बोले क्या हो गया, तुम इतना प्रश्न पूछ रहे, जवाब दिया तुम्हारा, तो क्यों रो रहे हो। तो कभी कभी होता ना बच्चे ना इतना रोते ना ऐसा ऐसा करके बोल नहीं पाते उसमें, है ना, जानते आप, जिन्होंने माताओं ने जन्म दिया है बालों में, इतना कभी रोते कि वो रोने का जो है ना स्पिरिट वो कम होने तक वो बोल ही नहीं पाते, वो चाहते बोलना लेकिन बोल नहीं पाते, उनके सांस ऐसे ऊपर नीचे होती रहती। थोड़ा शांत हो गए ना, फिर उन्होंने बोला, मैया सबकी बीवी है मेरी बीवी नहीं है। तो ये भी कोई रोने का कारण है, मैया बोल रही तुम छोटे हो बेटा, बालक हो, जब उपवर हो जाओ, उपवधु हो जाओगे, सॉरी जब शादी के योग्य हो जाओगे तुम्हारी भी शादी करेंगे, बहुत बढ़िया लड़के से करेंगे। वो कहते हैं सबकी बीवी तो अभी मेरे सामने है, तो मेरी बीवी भी अभी मेरे सामने होनी चाहिए। मैं क्या बताए बाल अटको, वो समझाया उसको ऐसा नहीं होता बेटा। अभी देखो कृष्ण रोने लगे ना तो सारा कारवा रुक गया, अरे बैल भी रुक गए, शकट भी रुक गए सब, क्योंकि वो कैसे चलेंगे जब कृष्ण रो रहा है तो, हाउ कैन दे वॉक। तो सब कारवा ठप हो गया, क्यों ठप हो गया, कृष्ण रो रहे हैं। तो सब लोग उधर आए छकड़े के पास जहां पर बैठे हुए हैं गोद में मैया के, और सब लोगों को भी चिंता हो रही है, अभी ये रो रहा है सुनता ही नहीं है, रो रहा है रो रहा है, बोला अभी बीवी चाहिए। तो सब गोपियों ने मिलकर भी समझाया, अरे बेटा ऐसा नहीं होता है, अरे वो उसकी उम्र होती है उसके लिए, फिर ऐसा होता है वैसा होता है, सब समझाया। लेकिन वो जितना समझा रहे उतना जोर से रो रहे, अभी कभी बीवी चाहिए मुझे, बड़ी समस्या हो गई, अभी क्या करें उसको, कहाँ से लाए उसके लिए, शादी कैसे करें उसको रास्ता में उसकी। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो ये तो सुनने वाला नहीं है, इसको शांत करना जरूरी है, शांत किए बिना हमारा कारवा आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग यही रहेंगे। तो फिर डिस्कशन किया और तय किया कि ठीक है अभी यहाँ पर जितनी गोपियाँ हैं उसमें से एक चुन लो, उसका विवाह कर देंगे आपके साथ। तो फिर क्या हुआ, छोटी छोटी गोपियाँ, फिर थोड़ी बड़ी गोपियाँ, फिर थोड़ी बड़ी गोपियाँ, फिर युवा अवस्था की गोपियाँ, फिर शादीशुदा गोपियाँ, फिर उसके बाद बच्चे वाली गोपियाँ, फिर मिडिल एजेड गोपियाँ, फिर वृद्ध गोपियाँ, फिर अति वृद्ध गोपियाँ, ऐसे सब ग्रुप बन गया। बोले ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, इसमें से कोई तो ढूंढ लेगा। अभी मुझे इतना समय नहीं बताने के लिए, लेकिन सारे प्रकार के ग्रुप की गोपियाँ बच्चे जो उसके योग्य हैं उसके सारे उसके सामने आकर, मतलब उनका क्या है, क्या था वो, होता ना ऑडिशन होता है ना, वो फिल्म में कैसा होता है एक टेस्ट होता है, टेस्ट कैमरा टेस्टिंग, ऐसे खड़े होके वो करेगा उसको बाद। जितने भी आए सामने लाखों गोपियाँ आई, सबको करके बात कर दिया। अभी अभी क्या करें, अभी वो विवाह करना चाहता है, बीवी चाहता है, लेकिन करे क्या, सबको मना कर रहा है। हमारे भी वैसे बहुत लड़के, हमारे भी है, हमारे हरे कृष्ण में कितने लड़के दिखाए तो भी सबको मना ही कर देते हो, बोले ये नहीं है, उसका नाक ऐसा है, कान ऐसा है, इधर भुए ऊपर है, एक छोटी है, क्या क्या बताते रहते हैं, बहु दुधी आखुड़ सिंगी, क्या क्या बताते रहते हैं। हम डांटते हैं उनके बहुत कि तुम क्या कोई आकाश से उतरे देवता हो क्या, तुम्हारे लिए देवता लड़की चाहिए। तो ऐसे कृष्ण ने सबको मना कर दिया, अभी केवल वो 105 उम्र वाली गोपी बची। अभी क्या करें, वो भी सामने आ गई। तो जैसे ही वो सामने आई, बाल कृष्ण यशोदा के गोद से कूद कर उसके गोद में गए, बोले यही मेरी बीवी है। अरे बाप रे, सब लोग दंग रह गए, अभी उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको बोला रोना बंद करेगा ना तो कोई भी बीवी चलेगी। रोना बंद होना चाहिए, अपना उपाय सफल होना चाहिए। तो उसके गोद में बैठ के हंसने लगे, बोले यही मेरी बीवी है, यही मेरी बीवी है, मुझे पसंद है। तो लोग बोले बड़े जोर की बीवी ढूंढी तुमने, बड़ी जोर की बीवी ढूंढी है, क्या समानता क्या है तुम्हारे अंदर, मतलब क्या देख के तुमने उसको चुना कि तुम्हारी बीवी है। उम्र 105 है, तुम्हारी तो गोद में उम्र है, क्या क्या मतलब तुम सुकोमल बालक हो, तो बड़ी अति वृद्धा है। वो कहते हैं मुझमें और उसमें एक समानता है, मेरे मुंह में भी दांत नहीं है, उसके भी नहीं है। अभी क्या बोलेंगे उसके ऊपर आप, क्या मैया बोलेंगे, क्या गोपियां बोलेंगी। और फिर कहे अभी उसी के गोद में बैठकर छठिकरा से अगले अंजाम तक गए सब। सोचो आप, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी हास्य मतलब हास्यजनक कथा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा गहरा मर्म छुपा हुआ है इतनी सी मधुर कथा में। वो क्या कथा है, क्या मर्म है वो, कि वो 105 साल की गोपी को क्या चांस था बताओ कृष्ण उसके गोद में आने का, कुछ चांस था किसी भी लौकिक तरीके से, गुणवत्ता तरीके से चांस था, नो चांस। पर उसने एक प्रामाणिक शुद्ध इच्छा हृदय में प्रकट की और भगवान ने उसकी प्रामाणिक शुद्ध इच्छा पूर्ण करने के लिए ये पूरी लीला रचाई, इतना पूरा आयोजन किया ताकि उसके गोद में चला जाऊं। और वो गए गोद में उसके, मतलब ये जो कथा भगवान ने लीला बनाई ना, वो एक इम्पॉसिबल लीला है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू इमेजिन कि ऐसा भगवान करेंगे तो मैं उनको गोद में जाऊंगा। किसी भी तरीके से किसी की कल्पना में ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता है कि ऐसे करेंगे तो उसके गोद में वो बालक आएगा और फिर उसको गोद में सफर करेगा। लेकिन भगवान ने ऐसी अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इनकंसीवेबल लीला को रचाया और उस गोपी के शुद्ध इच्छा को पूर्ण कर दिया और उसके गोद में बैठकर, यशोदा के गोद में नहीं बैठते हुए, उसके गोद में बैठकर पूरा सफर किया आगे का। हमारा काम क्या है, हमारा काम भी ऐसे प्रामाणिक इच्छा भगवान की सेवा में करना है, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना। 18 कोटि का अस्पताल बरसाने में बनना चाहिए, बहुत बड़ा काम है वो, हमारे किसी के बस का काम नहीं है, हमारे जेब में उतने पैसे नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि ये मेरे गौरव के लिए या किसी के गौरव के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, ताकि मैं उसका ट्रस्टी बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, मैं अधिकारी बनूं, मैं कंट्रोल करूं उसको। ये केवल ब्रजवासियों के, राधा रानी के धाम की सेवा करने के लिए ही बनाया जा रहा है। और भगवान थोड़ा वेट भी कराते हैं हमको, स्वयं से रुकाते हैं, परीक्षा लेते हैं, और थोड़ा सा इच्छा और तीव्र हो जाए, और थोड़ी ज्वलंत इच्छा उत्पन्न हो जाए, और प्रार्थना हो जाए, और शरणागति उत्पन्न हो जाए। बहुत क्या कहते हैं ना, उसको चक्की में पीसते हैं भगवान। तो वैसे भी वो स्थिति है आज, जैसे वो 105 साल की जो माता है उसके गोद में जैसा इम्पॉसिबल है कृष्ण को आना, वैसे आज की घड़ी में वो अस्पताल बनना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन आप सब लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी ऐसी लीला रचाएंगे, कहीं से कोई सितारा ऊपर आएगा क्षितिज के ऊपर और वो बांध देगा उसको, और हम लोग अपने आंखों से वो लीला को देखेंगे साक्षी के रूप में। जैसे हमारा भक्तिवेदांत अस्पताल है बंबई का, वो भी एक सपना ही था, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, अभी जस्ट पास हुए थे, किधर हमारे पास 400 रुपये का स्टाइपेंड था हमारे लिए, और उसमें से 200 रुपया निकालते थे हम लोग, शादीशुदा थे सब लोग, 400 रुपये का स्टाइपेंड, 200 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैंप, और 200 रुपये में महीना चलाते थे पति पत्नी, और वो कैंप की दवाई खरीद कर वो जाते थे कैंप में। उस स्थिति में, उस समय, आज से कितना साल हो गए उसको, 98 में खोला था, 21 ईयर्स पूरा हो गए, लेकिन ये बांधने का जो विचार चल रहा था ना, वो 92 में चल रहा था कि बांधना चाहिए, तो 92 मतलब 27-28 साल पहले की बात है वो, तभी ये सब विचार कर रहे थे अस्पताल होना चाहिए, तभी 15 कोटि का अस्पताल था वो, जिसकी आज 150 करोड़ कीमत है करंट वैल्यू, 15 कोटि मतलब वो एक पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा ऊपर है वो। लेकिन 10 साल जो हमने मेहनत की थी, गांव-गांव में जाकर कैंप किया था, कीर्तन किया था, प्रचार किया था, प्रसाद बांटा था, बनवाया था, जो भी प्रचार किया था, उसमें कुछ लोगों ने 1 महीने में 11 रुपये, 1 महीने में 21 रुपये, 1 महीने में 51 रुपये, 1 महीने में 100 रुपये, सबसे मैक्सिमम 1500 रुपये, मिस्टर मफतलाल और उनके क्लासमेट, उनसे हम लेते थे। गरीबान सा कईवारी स्कीम था हमारा, पेटर्नस ऑफ पुअर, 10 साल तक उनको हर महीने मिले, हम रिपोर्ट दिया पैसे लिए, रिपोर्ट दिया पैसे लिए, हर महीने में किया, एवरी मंथ। उनमें से 26 लोग सामने आए और उन्हें 15 करोड़ का अस्पताल बांध दिया। ऐसा है। वो बड़ा आश्चर्य है, वो बहुत बड़ा आश्चर्य है, कैसे हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे पास तो थे ही नहीं पैसे। लेकिन जब शुद्ध इच्छा हृदय में होती है तो उसकी प्रेरणा किसी को मिल जाती है, सक्षम व्यक्ति को, और वो फिर आगे आकर भगवान की कृपा से हमारा काम पूरा कर देता है। तो हमको विश्वास है, अगर हमने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं तो ये चमत्कार भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। बस जिंदा रहना है भगवान का नाम लेकर, तब तक वेट करना है, चाहे वो डेथ बेड से क्यों ना हो, लेकिन अस्पताल जरूर देखेंगे। हरि बोल, राधे श्याम। तो आप उस 105 उम्र की, वो वर्ष उम्र की गोपी को प्रणाम करो, सब लोग प्रणाम करो, कि उसने जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक क्या कहते हैं उसको, आदर्श खड़ा किया है, जो निराश अवस्था में भी हमको आशा देता है। ऐसे ही हमारे शिव जी ने आशेश्वर महादेव पे खड़ा किया है। इम्पॉसिबल अवस्था थी ना वो, कृष्ण को मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसा रोए तो कृष्ण को भी रोना में मजबूर कर दिया उन्होंने। और जो इम्पॉसिबल था, वो मैया ऐसे ही हाथ जोड़कर निमंत्रण दे रही है, आ जाओ घर पे आ जाओ, बालक रो रहा है, कुछ करो आप। तो यही ब्रज है, ब्रज में कोई निराशा नहीं है। ब्रज में निराशा में जो आशा देखता है, वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है और चमत्कारों का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। अगली लीला यहाँ पर ऐसी है कि रामायण में आप जानते हैं कि भगवान तो लीला करते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं सब करने की, लेकिन वो भक्तों के आनंद के लिए लीला करते हैं। वो उस लीला में कैसे एंग्जाइटी, इमोशन, एक्शन, वो सब कुछ होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि भाई संत कथा चल रही है, ऐसा नहीं है, उसमें भी सनसनीखेज, ड्रामा, युद्ध वद्ध, डायलॉग बाजी सब होता है उसके अंदर। तो इंद्रजीत ने जब प्रभु से युद्ध किया तो वो नागपाश फेंका प्रभु के ऊपर, और प्रभु रामचंद्र जो है ना, वो नागपाश में बेहोश हो गए। तो नागपाश में एक समय दिया गया कि इतने समय के पहले नागपाश अगर छूटने गया तो प्रभु राम की मृत्यु हो जाएगी, लौकिक दृष्टि से। तभी सब लोग इमरजेंसी में आ गए ना, अभी इसके बीच में आपको ये नागपाश से भगवान को मुक्त करना है। तो वहाँ पर नारद मुनि क्या किसी के आदेश के अनुसार गरुड़ जी को बुलाया गया, और गरुड़ जी आप जानते हैं ना, सांपों को तो वो खा जाते हैं, सांप डरते हैं उनसे। तो गरुड़ जी जैसे आए ना, कुछ किया नहीं उन्होंने, केवल आए वो, और आने से ही सारे सांप जो भगवान को बांध कर बैठे थे वो सब भाग गए अपनी जीवित के डर से। इसलिए हमको भी ऐसा बनना चाहिए कि केवल हमारे होने से पवित्रता उत्पन्न होनी चाहिए, हमारे होने से पवित्रता, शुद्धता, पवित्र भाव निर्माण होना चाहिए, हमारे होने से लोगों का चिंता दूर होना चाहिए, हमारे होने से लोगों की भक्ति की जागृति होनी चाहिए। केवल होने से, संत लोगों की केवल उपस्थिति भी जरूरी होती है, केवल उपस्थिति भी होंगी ना तो पवित्रता उत्पन्न होती है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, कई भक्त उनको ना बहुत टेंशन में, बहुत समस्या में, बहुत सारी प्रश्न लेकर उनके पास मिलने को जाते हैं, और बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, और कहा जाता है कि 15 मिनट है आपके पास, तो 15 मिनट में 150 प्रश्न कैसे पूछें ये भी प्रश्न होता है। लेकिन फिर भी मिल रहा है ना, जाके कुछ ना कुछ तो कहेंगे गुरुजी को, कैसे समाधान करें समस्या का। लेकिन जब वो गुरुजी को मिलने जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, जो उद्विग्न था एकदम शांत आनंद में डूब जाता है, और लगता है कि अभी क्या पूछें, इतने सारे प्रश्न थे वो सब गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? शुद्ध भक्त के, शुद्ध संत के सान्निध्य में, उनके ऑरा में, उनके लहरों के बीच में आएंगे ना, हमारी सारी जो नकारात्मक लहरें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और उनके सकारात्मक लहरों में हम आते हैं तो उसी का अनुभव करते हैं। उनके क्षेत्र में आएंगे ना, प्रभाव क्षेत्र में, उनके सान्निध्य में आएंगे तो सारी चिंताएं दूर जाती। इसलिए कहा गया है, हमेशा संतों के संग में रहो। तो मुझे एक बात और याद आ रही है, जो संतों के संग में भगवान की कथा कही जाती है ना, उसमें 108 उपनिषद, 18 पुराण, 7 तीर्थ, सारे धाम, हनुमान जी, नारद मुनि जैसे वशिष्ठ मुनि, वेदव्यास जी, अंगिरा मुनि जैसे महान महान ऋषि, स्वयं श्री कृष्ण सारे समुद्र, श्रीमद् भागवत, व्यक्तिमत भागवत, ऐसे सारे नदियां, सारे कुंड एक साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। आप वैसे एक समय पे एक जगह पर स्नान कर सकते हो, एक नदी में, एक कुंड में, लेकिन सत्संग में बैठने से सारे जितने भी 68,000 तीर्थ हैं उनमें एक साथ स्नान करने का भाग्य मिलता है। कृष्ण स्वयं आकर अपनी कथा सुनते हैं, हनुमान जी स्वयं आकर रामलीला कृष्णलीला सुनते हैं, सारे संतगण नारद मुनि आदि सारे महाजन पंच महाभागवत जितने भी नव योगेंद्र जितने भी सखा सखी भगवान के हैं वो सब आकर भगवान की कथा सुनते हैं। और वो सब लेक्चर जो है वो हम लोग घर में भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन यूट्यूब में आपको श्रवण होगा, लाभ होगा, लेकिन वो तीर्थों का स्थान नहीं होगा जो आपको कथा में बैठ के मिलता है। इसलिए नित्य नियम से हर एक मनुष्य को सत्संग में जाना चाहिए, फिजिकली जहाँ सत्संग हो रहा है, नदी किनारे हो रहा है या मंदिर में हो रहा है, घर में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, भगवान की चर्चा जहाँ हो रही है, सत्संग सत के विषय में जहाँ संग हो रहा है, उसका गौरव वर्णन हो रहा है, वहाँ पर जाकर बैठकर वो सुनना चाहिए सतर्कता के साथ, एकाग्र हृदय से, तब हृदय की बहुत जल्दी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो गरुड़ जी के केवल आने मात्र से सर्पपाश निकल गया, प्रभु राम होश में आ गए, लेकिन हुआ ये कि गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, अरे ये वास्तव में भगवान है, हमारे ठाकुर जी हैं कि नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर हैं, खुद लाचार पड़े हैं और हमारे आते ही वो जीवन को प्राप्त कर चुके, तो क्या ये भगवान है कि कौन और है। तो ये संदेह को भगवान ने भी अनुभव किया। अच्छा, भगवान ने उनको ये सब लीला क्यों किया, क्योंकि रामलीला के अंदर कोई गरुड़ का रोल नहीं है, तो है कि गरुड़ का रोल लिखा आपको, तो राम भगवान को अपने वाहन की याद आ रही थी कि मेरा कोई वाहन भक्त है गरुड़ नाम का, तो उनको भी लेना चाहिए लीला में, बहुत दिन का संग नहीं हुआ है, तो उन्होंने ये सब लीला करके उनको बुला लिया, लेकिन उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तो त्रेता में जब संदेह उत्पन्न हुआ तो द्वापर में जब ही आए भगवान लीला करने के लिए, तो गरुड़ जी को उन्होंने आह्वान किया, प्रेरणा दी, आ जाओ करके, और यहाँ पर गरुड़ जी आए हैं इसी जगह पर छठीकरा में। तो जब आए तब कृष्ण कृष्ण जो है वो उनके तुरंत कंधे पर बैठ गए, सवार हो गए उनके ऊपर। अभी देखिए आप, गरुड़ के ऊपर इच्छा करने से भी कोई सवार नहीं हो सकता है, हम और आप जाकर गरुड़ पर नहीं बैठ सकते, नॉट पॉसिबल। तो वो जो सफलतापूर्वक सवार हो गए, तब गरुड़ जी को विश्वास हुआ कि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं, आराध्य भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो ये लीला यहाँ पर हुई है, और वही लीला एक बार भगवान ने और की, लेकिन अलग ढंग से की। गरुड़ का तो गर्व मतलब संदेह दूर किया ही किया, कि दंडवत करके गरुड़ जी चले गए हैं। दूसरी बार यहाँ पर सारे ग्वाल बाल जो है ना गौचारण कर रहे थे, अचानक भगवान को क्या मूड आया पता नहीं, भगवान ने कहा सीतामा गरुड़ बन जा, सीतामा उनके प्रिय सखा है ना, और वो हाँ या ना करने के पहले स्वयं गरुड़ बन गए, वो रूपांतर हो गया उनका गरुड़ के रूप में। और जैसे ही वो गरुड़ बन गए, एक्चुअल गरुड़ पक्षी बन गए वो सुदामा, श्रीदामा राधा रानी के बड़े भाई, तुरंत भगवान ने 12 भुजाओं वाला ऐश्वर्य संपन्न रूप धारण किया और वो उस पर सवार हो गए। इसलिए गरुड़ गोविंद जी यहाँ पर है, वो जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ऐसे, वो गरुड़ जी का मुख है और नीचे गरुड़ जी पूरे बैठे हुए ऐसे, और उनके ऊपर ऐसे भगवान ऐसे पैर रखकर बैठे हैं, उनको 12 भुजाएं हैं। वो 12 भुजाओं में शंकर चक्र पद्म गदा है, तलवार है और बहुत सारी चीजें हैं, फूल है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो एक तरह से भगवान ने यहाँ पर जो 2 भुजा वाले भगवान यहाँ पर नंगे पैर घूम रहे हैं, तो उनको दिलाया, थोड़ा ऐश्वर्य दिखा दिया अपने भक्तों को। तो यहाँ पर भगवान ने ऐश्वर्य द्वारका का ऐश्वर्य प्रकट किया, और जैसे ही द्वारका का ऐश्वर्य प्रकट किया, जो राधा रानी उनके संग में थी वो लक्ष्मी बन गई, जो द्वारका में लक्ष्मी स्वरूप सब पत्नियां हैं ना भगवान की। तो यहाँ पर जो गरुड़ गोविंद के बाजू में खड़ी हैं वो वास्तव में राधा रानी है, लेकिन लक्ष्मी के ऐश्वर्य संपन्न रूप में खड़ी है वो। और जब ये द्वारका का ऐश्वर्य संपन्न दृश्य निर्माण हुआ, यहाँ पर भगवान ने अपना ऐश्वर्य का ऐसा प्रभाव किया, तो रुक्मिणी और सत्यभामा भी प्रकट हो गई, जो गरुड़ के 2 पैरों के पास में उनका विग्रह है। इसलिए देखना एक होता है और सुनने से फिर पता चलता है कि क्या देखना है। इसलिए हम कहते हैं जब आओगे ना पहले कथा सुनो फिर दर्शन करो, फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या देख रहे हो। ये तो क्योंकि देख भी रहे हो और फिर भी ना देख रहे हो, और जब सुनोगे तो देख रहे हो तो देख रहे हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। यू सी बट यू डोंट सी। एक कहानी बताऊं और उसकी, वो एक फेमस डायलॉग है हमारे प्रभुपाद जी का, यू सी बट यू डोंट सी। इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या देख रहे हो। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में राउंड ले रहे थे, हाँ वॉकिंग अपना कर रहे थे, संध्या का समय था, ये संध्या का सुबह का समय था, तो उन्होंने अंधेरे में थोड़ा वॉकिंग शुरू किया, फिर धीरे धीरे उजाला हो गया और अंधेरे में ट्यूबलाइट लगी हुई थी प्रकाश के लिए, और प्रभुपाद जी आगे शिष्य पीछे पीछे, उन्होंने एक राउंड लगाया, एक जगह आके रुक गए और प्रभुपाद ने कहा यू सी बट यू डोंट सी। तो भक्तों को लगा प्रभुपाद जी बहुत गहरी साक्षात्कार पूर्ण ऐसी बात बता रहे हैं, कोई रहस्य की बात बता रहे हैं। तो सबके उत्सुकता बढ़ी, व्हाट इज दैट विच ही सीज एंड आई डोंट सी। फिर वापस उसी विचार में सब लोग राउंड राउंड लिया, उसी जगह पर प्रभुपाद सेकंड टाइम आए, खड़े हो गए, बोले यू सी बट यू डोंट सी। बाप रे, प्रभुपाद कुछ बहुत ही रहस्यमय चीज का दर्शन कर रहे हैं जो हम जैसे पापी लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक और राउंड ले लिया और खड़े हो गए वहां पर उसी जगह पर, और कहते हैं यू सी बट यू डोंट सी, आप देख रहे हो फिर भी आप नहीं देख रहे हो। तो अभी तो उनका चरम सीमा में पहुंच गया उत्सुकता, प्रभुपाद जी अभी बता ही दीजिए हमको आप क्या देख रहे हो, प्लीज टेल अस व्हाट यू आर सीइंग व्हाट आई एम नॉट एबल टू सी। तो प्रभुपाद ने कहा दिन ऊपर आ चुका है, उजाला हो चुका है, फिर भी ट्यूबलाइट ऑन है और आप देख रहे हो फिर भी नहीं देख रहे हो। क्योंकि वो हर एक रुपया हर एक पैसा बचाते थे कृष्ण की सेवा के लिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये उनकी चेतना थी। वो ऐसा पर्स में से नोट निकालते ना किसी को देने के लिए, बिल भरने के लिए, भी ऐसा बड़े ही कलात्मक दृष्टि से वो निकालते थे। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि उनका पर्स से पैसा निकालने का तरीका देखकर कुछ लोग भक्त बने हैं, देख के उनको, उनको वो जल पीते थे ऐसे ऊपर से ऐसे, बहुत ही क्या कला थी उनके अंदर, वो ऐसे पीते थे। तो एक बार उनको जल पीते हुए देखकर एक व्यक्ति भक्त बन गया पूरा, बोले क्या कला है इनके अंदर। तो शुद्ध भक्त का अस्तित्व ही उनको प्रेरणा देता है, जो करेगा वो परिपूर्ण और आदर्श का कार्य होता है। तो इस तरह से यहां पर भगवान जी, भगवान ने गरुड़ गोविंद का दर्शन दिया। भगवान है ना, ज्यादा देर तक अपना ऐश्वर्य दिखा नहीं सकते, बाद में किसी को याद नहीं आया, सीतामा को याद नहीं आया, किसी को याद नहीं आया मैं गरुड़ बना था, वो भगवान बनकर देख दर्शन दिया वगैरह, किसी ने किसी को याद नहीं आता, क्योंकि इतना गहरा उनका माधुर्य प्रेम है उनके साथ में कि वो भगवान है, अधिक देर तक याद नहीं रहती उनको। अभी थोड़ा गरुड़ के विषय में बोलना जरूरी है बिफोर आई एंड। वो कश्यप मुनि थे ना, उनको दो बहुत सारी पत्नियां थी, दो पत्नियां कद्रु और विनीता। कद्रु से सर्पवंश का जन्म हुआ है और विनीता से अरुण और गरुड़ का जन्म हुआ है। तो ये थी पुरुष जैसे नारियां, मतलब मानव नारियां थी, लेकिन उन्होंने अंडे दिए क्योंकि उनको सांप को और पंछी को जन्म देना था। तो अनंत हजारों अंडे दिए कद्रु ने, और उनको 500 साल तक गर्म पानी के अंदर रखा, इनक्यूबेटेड, और उसके बाद में वो अंडे तोड़कर सब सर्पों का जन्म हुआ। अनंत शेष भगवान भी उसके पुत्र हैं। फिर कालिया, वासुकी, तक्षक जैसे महान महान हजारों सैकड़ों फनों वाले जितने नाग थे वो सब जन्म हुआ उनका। और विनीता ने उस समय दो अंडे दिए और 500 साल रखने के पश्चात भी वो अंडे फूटे नहीं। तो पता है ना औरतों में कैसा होता है, वो गांधारी को कैसे हुआ, अरे कुंती को जंगल में पुत्र हुआ और मैं अभी भी गर्भवती हूँ। तो उसने पेट पर आघात किया तो गर्भपात होके जो निकला बाहर, उसको 100 टुकड़े करके जल में रखा गया, फिर 100 कौरवों का जन्म हुआ। लेकिन शुरू कैसे हुआ, उसको हुआ मुझे नहीं हुआ, उसको जो होगा वो सीनियर माना जाएगा, मेरा होगा जूनियर माना जाएगा। कितना पॉलिटिक्स है मन में, देखो। तो वैसे ही इनको लगा कि अरे उनको पुत्र हो, मुझे नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, एक अंडा तोड़ा अपने हाथ से, वो अंडे में से एक आधा डेवलप हुआ व्यक्ति जन्म हो गया उसका, मतलब उसके कमर के नीचे का भाग डेवलप ही नहीं हुआ है, उनकी गर्भावस्था पूर्ण नहीं हुई है ना। उनका 1000 साल का समय था, 1000 साल के बाद में फिर वो परिपक्व होकर जन्म लेंगे, तो 500 के अंदर इनको जन्म हो गया। इसलिए देखो, सांप का जन्म और गरुड़ जी का जन्म में अंतर है ना, थोड़ी सेम सेम सब होगा उसका। तो जब ही वो टूटा तो वो बालक बाहर आया, बड़ा तेजस्वी बालक था वो, जिसका नाम अरुण है। उसने कहा, माता तुमने बड़ा अपराध किया है, तुम्हारे वजह से मैं अभी अधू और पंगु हो गया है, मैं आपको शाप देता हूं कि तुम दासी बनोगी, दासता को प्राप्त करोगी। ऐसे करके वो उड़ के, पज्जी था ना वो, उड़कर चला गया और सूर्य देव का सारथी बना। इसलिए अरुणोदय और सूर्योदय इसमें अंतर होता है, शुरुआत में अरुणोदय होता है, उसके बाद में सूर्योदय होता है। जो लालिमा होते हैं ना पहले वाली, वो अरुणोदय है, जो अरुण के द्वारा होता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है। तो फिर वो सूर्य का सारथी बने और फिर वो शांत हो गया, अरे बाप रे। तो उन्हें 1000 साल तक इंतजार किया, अंडा अपने आप फूटा, उसमें से गरुड़ जी बाहर आ गए। बोलो गरुड़ भगवान की। क्यों उनको भगवान बोल रहा हूँ, वही बता दूंगा आपको मैं। तो अभी क्या हुआ, शाप तो था पहले पुत्र का, तो वो कद्रु और विनीता, वो अपनी सौतन है ना एक दूसरे की, तो वो घूम रही, एक दिन ऐसे घूम रही है, तो आकाश में ना उच्च श्रवा घोड़ा जो था ना वो विहार कर रहा था आकाश में। ये जो घोड़ा है वो समुद्र मंथन में पैदा हुआ था, 14 रत्न में से एक रत्न उच्च श्रवा अश्व है, वो सफेद रंग का अश्व है, सफेद रंग की पूंछ है, बहुत विशाल तेजस्वी घोड़ा है वो। सब लोग सुनिए ध्यान से, बहुत रोचक कथा है महाभारत की। तो आकाश में उड़ रहा है, तो कद्रु को दिल में आया कि चलो थोड़ा सा क्या कहते हैं पजल, क्या पहली करें जरा। संध्या का समय था, थोड़ा अंधेरा होने वाला था, लेकिन लाइट भी था। तो कद्रु ने पूछा, बोलो बताओ विनीता दी बहन, बताओ इस घोड़े की पूंछ काली है कि गोरी है। तो विनीता ने कहा गोरी है, मतलब सफेद उसके बाल हैं पूंछ के। तो वो कह रहे नहीं काले हैं, क्योंकि उसने अपने काले रंग के सब सांपों को बताया था जाके उसके पूंछ को लट जाओ, पूंछ वे क्या कहते हैं उसको पकड़ लो। और इतना दूर आकाश में था तो समझ में नहीं आएगा कि बाल है कि पूंछ है कि सांप है। तो काले सांप भी लगे हुए थे उसको, और विनीता कह रही है कि वो गोरे हैं, और कद्रु कह रही नहीं काली पूंछ है उसकी। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी संध्या हो रही है, कल दोबारा टेस्ट करेंगे, और अगर मैं जीत गई, अगर काले हैं तो तुम दासी बनोगी, अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो अगले दिन वापस टेस्ट किया गया तो सारी पूंछ काली, तो कद्रु जीत गई और विनीता हार गई, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को चुपचाप बोल के रखा था, तो वो तुरंत काली दिखने लगी। तो मैंने कहा था, उन्होंने कहा था, मैंने कहा था ना काली है, तुमने सफेद का दासी बनो अभी। फिर गरुड़ के साथ में विनीता देवी कद्रु की दासी बनी है, और कई 1000 सालों तो दासत्व उनका चलता रहा। गरुड़ जी एक दिन परेशान हो गए, बोले मैया कितना दिन दासत्व करेंगे, देखो बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो जीत गई है वो अगर कहेगी मुक्त हो जाओ तो तुम मुक्त हो सकते हो, तो जाओ अपनी सौतन मैया के पास जाओ। तो वो गए हैं उनके पास और कहा मता हमें भी मुक्त करा दो। फिर कही थी तुम बड़े शक्तिशाली हो गरुड़, अगर तुम देवताओं के पास जो अमृत है वो अगर तुम मेरे बालकों को लाके दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हें दासत्व से मुक्त करूंगी। तो उस समय समुद्र मंथन हो चुका था और चंद्र देवता के पास में वो गरुड़ चंद्र देवता के पास में वो अमृत रखा गया था, और वो बहुत ही कड़ी सुरक्षा में था, कई प्रकार के उसका आवरण, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और कई प्रकार के आवरण लगाए गए थे उसके ऊपर, जो हम सोच नहीं सकते हैं। नॉट नो यंत्र तंत्र की बात नहीं है, वो मंत्र की बात थी वो। तो गरुड़ जी इतने पराक्रमी थे, उन्होंने सारे कवच तोड़ कर वो गरुड़ जो कलश रखा हुआ है अमृत का वहाँ तक पहुँच गए। रास्ते में जो भी आए उनको परास्त कर दे गए वो, और फिर उन्होंने वो कलश को उठाया, और वर्णन आता है कि गरुड़ ने वो अमृत के कलश का एक भी बिंदु नहीं पिया। जिस काम पे आए हैं वही काम करना है। मुझे आपको बोला कि ये गुरु महाराज के महाप्रसाद का प्लेट है, वो उनको दे देना। आप बोले अच्छा मेरे हाथ में महाप्रसाद है थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ, बाद में गुरुजी को देना ही है, यह हमारा मन कहता है, या उसको अगर गुरुजी छोड़ेंगे तो बचाओ मुझे मिलेगा, अच्छा लगता है गुलाब जाम बहुत। लेकिन गरुड़ जी को कितना मौका था, उन्होंने इतना मेहनत करके वो गरुड़ अमृत तक पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को स्पर्श नहीं किया, बोले माता को देना है बस, जो प्रण है उसके लिए करना है। तो गरुड़ जी की महानता का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। तो जब गरुड़ जी ने सारे कवच तोड़कर अमृत कलश को उठाया, ये खबर इंद्र तक पहुंची, तो इंद्र वज्र लेकर आए जो दधीची के अस्थियों से बनाया गया अभेद्य वस्त्र है, वो अस्त्र है, अजय अस्त्र है, वो लेकर आए और उन्होंने गरुड़ को चैलेंज किया, मैं तुम पर वज्र चलाऊंगा, कलश छोड़ दे। तो गरुड़ जी बहुत जोर से हंसे, अरे तुम्हारे वज्र से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं ये वज्र जो है ये दधीची महर्षि के अस्थियों से बना हुआ है और वो आपको प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है वो देवताओं का, देव राजा के पास में है देवेंद्र, इसलिए उस अस्त्र का आदर करने के लिए मैं मेरा एक पंख दूंगा आपको। तो उन्होंने उसको चलाया है वज्र को और केवल गरुड़ की एक पंख जली है और कुछ नहीं हुआ है, वो भी उसकी इच्छा से, नहीं तो वो भी नहीं जलता, लेकिन आदर के लिए उन्होंने अपना एक पंख दिया कि जला लो चलो, उसका सम्मान रखते हैं अस्त्र का। तो उस समय इंद्र जी उनके चरणों में गिरे हैं और महाभारत में पूरा गरुड़ का महात्म्य वर्णन किया उन्होंने, गरुड़ जी कितने महात्म्य हैं। उसमें वो कहते हैं कि आप जो है वो भगवान के वाहन हो और भगवान को धारण करना भगवान के अंश के बिना किसी को मुमकिन नहीं है, वो भगवान है स्वयं विष्णु तत्व है, तो विष्णु तत्व के बिना भगवान को धारण करना कोई किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप स्वयं विष्णु तत्व हो, इसलिए मैंने भगवान गरुड़ कहा और कहा कि आपसे शत्रुत्व करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, आप हमारे से मित्रता करें। तो गरुड़ से इंद्र की मित्रता हुई है और फिर वो इत्मीनान से इंद्र के सामने, हम बोलते ना इंग्लिश हमारे लोकल भाषा में, इज्जत से गरुड़ कलश लेके गए और वो वहाँ पर आके उन्होंने दिया है और इंद्र ने कहा मेरी एक शर्त है आपके लिए, आप ले जाओ मैं भी आपके पीछे पीछे आऊँगा, देखूंगा आप क्या कर रहे हैं और बाद में मैं ले जाऊँगा उसको वापस। तो वहाँ पर आए, कदरू जी को बुलाया है, बोले मैं अमृत लेके आया हूँ। कदरू जी बड़े प्रसन्न होंगे, अरे इतना महत् कार्य, क्या कहते हैं उसको, असंभव कार्य गरुड़ ने किया है और इससे वजह से क्या होगा, मैं दासता से मुक्त करूंगी, मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे, इतना बड़ा देन क्या कुछ भी कीमत नहीं उसकी, दासता से मुक्त करना क्या बात है, बहुत दासी मिलेंगी मुझे। तो फिर गरुड़ ने कहा मैंने कुश होता ना कुश, हम लोग ने यज्ञ में आप लोग बैठे थे ना उस आसन पे, ऐसे कुश के आसन पर मैं ये कलश रखता हूँ और आप लोग आके ले लीजिए उसको, मेरा काम हो गया पूरा। तो इंद्र भी वहाँ खड़े हैं, इंद्र बड़े चतुर थे। कदरु ने अपने पुत्रों से कहा, सर्पों से जाओ नदी में स्नान करके आओ, अमृत का पान करने का मौका आ गया है। तो गरुड़ ने कहा मैं रखा है आप ले लीजिए, और गरुड़ चले गए और ये सब सांप लोग स्नान करने चले गए। उतने में इंद्र ने वो कलश उठाया और इंद्र भाग गए। तो जब ये सांप लौट के आए तो कलश तो नहीं है, खाली आसन है, निराश हो गए वो, लेकिन उनको लगा कि कुछ बूंदे कलश में इधर हैंडल करते हुए गिर गए होंगे। तो उन्होंने ना सारे सांपों ने अपने जीभ से वो कुशा का जो था ना आसन उसको बहुत चाटा आगे पीछे से, तो सबकी जीवा कट गई। इसलिए सांप की जीवा दो होती है, क्योंकि उन्होंने अमृत को चाटने का प्रयास किया तो उनकी जीवा की सबकी कट गई, अमृत प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आचार्य बताते हैं, क्योंकि माता के षड्यंत्र में उन्होंने सहयोग दिया था, चीटिंग वाले षड्यंत्र में, इसलिए अमृत मिलने की स्थिति होने पर भी उनके पाप कर्मों की वजह से उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कर्म प्रधान है, ध्यान रखना, सबसे पावरफुल जीन्स है कर्म जीन्स, कोई दवा भी असर नहीं करती, तभी समझते कि ये हमारी दवा के बियॉन्ड है। इसलिए कर्म से अगर मुक्त होना है तो भगवान का नाम लो, कोई भी होम हवन मंत्र, मतलब कोई भी होम हवन या विधि या दान पुण्य करने से कर्म नष्ट नहीं होते हैं, कर्म नष्ट होते भगवान का नाम लेने से। और कर्म के तीन प्रकार हैं, एक फलित यानी जो अभी दिख रहा है आपको, अभी बुखार आ रहा है आपको या पैर दुख रहा है आपका, वो फलित हो गया है आपका कर्म। दूसरा है कूट, कूट यानी अभी वो वो कहते हैं ना हमारे मतलब इंग्लिश में मेडिकल में प्रोड्रोमल सिचुएशन, मतलब अभी आपको बुखार आने वाला है, बुखार आया नहीं है लेकिन सर दर्द हो रहा है, शरीर दुख रहा है, बहुत छींक आ रही है, अभी बुखार आने की संभावना है, उसको कहते हैं कूट। बुखार आ गया तो फलित हो गया वो, और बुखार आने वाला है तो वो उस कंडीशन को कहते हैं कूट, और अभी कुछ भी नहीं है तो उसको कहते हैं बीज। यानी कि छोटी बालिका है उसके विषय में कहा गया है कि वो जब शादी करेगी तो उसका डिवोर्स हो जाएगा, समझो, तो अभी बालिका अवस्था में क्या है उसका, कुछ भी नहीं। वो जब समय आएगा तो वो बीज जो है वो फलित हो जाएगा। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्या कहा मैंने, फलित, कूट और बीज, बीच में एक प्रारब्ध भी है। हाँ, तो प्रारब्ध अप्रारब्ध, प्रारब्ध यानी जो अभी हो रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, अप्रारब्ध यानी कूट और बीज, ठीक है। तो भगवान का नाम लेने से, कभी कभी कहते हैं नदी में स्नान करेंगे, गोदावरी में, यमुना में, तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो दान पुण्य करने से भी पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन बीज किसी भी विधि से नष्ट नहीं होता है। और बीज को अगर नष्ट करना है, जो हमारे पूरे जीवन के दुख का कारण है, द रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज दैट बीज, जो हमने पिछले जन्म से लाया हुआ है अपनी इच्छा के अनुसार, वो बीज कुछ भी करने से नष्ट नहीं होता है, केवल हरि नाम का जप और संकीर्तन करने से ही वो बीज नष्ट होता है। अभी आप एक और को एक रहस्य के बाद बताता हूं, स्वभाव कैसे बनता है। स्वभाव तीन चीज से बनता है, रामचरित बहु सुन रहे हैं, स्वभाव तीन चीज से बनता है, एक आपके सारे जितने पाप है उसका सार, एक आपके सारे जितने पुण्य है उसका सार, और तीसरी वस्तु है आपकी जितनी इच्छाएं बाकी है उसका एक सार, है ना। अभी आप अपने छाती पर हाथ रख के सोचो कितनी इच्छा बाकी है, हाँ मेरी बेटी की शादी करना बाकी है, बेटे की शादी करना बाकी है, उसको अमेरिका में सेटल करना है, उसको घर देना है, सब अनफुलफिल्ड डिजायर्स है ना, और बहुत सारी इच्छा पूरी हो गई, अभी आगे बहुत सारी इच्छा बाकी है। तो ये अनफुलफिल्ड डिजायर, पुण्य का सार और पाप का सार जब मिलता है तो स्वभाव बनता है हमारा, हमारा स्वभाव पाप पुण्य के द्वारा निर्देशित है, इच्छाओं के प्रभाव से निर्देशित है। और मराठी में कहते हैं स्वभाव वाला औषध नहीं, लेकिन ये सच नहीं है, सच भी है और सच भी नहीं है, बताता हूँ कैसे है। अगर आप दुनियादारी का जीवन जी रहे हो तो स्वभाव वाला औषध नहीं, अगर आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो तो आपका स्वभाव बदल सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप जप करते हैं भगवान के नाम का, चेतो दर्पण, बोलो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ऐसी विधि है जो जड़ से सभी कर्मों को नष्ट कर देती है, जड़ से दुख का कारण नष्ट कर देती है। और जब दुख किसके लिए होते हैं, पाप और पुण्य की वजह से, वो अगर नष्ट हो गए तो बचा क्या, इच्छाएं आपकी। और भगवान का भजन करने से हमारी इच्छाएं भी क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। आपको पहले, अभी हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर काम करते ना बरसाने में, उनको मैंने बहुत पीछा किया उनका, बहुत साल तक, हर साल यात्रा में मिलते थे मुझे, मैंने कहा था प्रभु जी आइए बरसाने में आप सेवा कीजिए, नहीं, उनको अमरीका जाने की फिक्स इच्छा थी, उन्होंने बहुत खर्च किया वो यूएस एमएलए देने के लिए, क्या क्या प्रयास किए, बहुत साल तक उन्होंने मेहनत किया, उनको अमेरिका जाना था किसी भी हालत में, लेकिन बीच में फिर वो उस रास्ते में जब थे तभी भक्त बन गए, और एक समय ऐसा आ गया उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है, नहीं जाना चाहिए, अभी भक्ति वेदांति ज्वाइन कर लेते हैं। तो चित्रकूट से भी वहाँ पर काम करते करते अमेरिका जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन वहाँ पर ऐसा अनुभूति हो गई उनको बहुत साल जप करने के बाद, ये सब बेकार है, नहीं जाना चाहिए, अभी हम गुरु की सेवा में जाएंगे। तो चित्रकूट से भक्ति वेदांत में आए और भक्ति वेदांत से बरसाना पहुँचे, अभी उनको 10 साल होंगे, अभी इतने अच्छे संत भक्त हैं वो हमारे, इतने मतलब ब्रजवासी उनका चरण छूते हैं। तो कहाँ अमेरिका जाने की इच्छा और कहाँ यहाँ पर परम वैष्णव बनकर सेवा कर रहे हैं। हाँ, उनके आँखों से ऑपरेशन करवाना मतलब ब्रजवासी अपना भाग्य मानते हैं, भक्ति विद्वान में जब थे जाने के पहले, तब भी वो सबसे टॉप डॉक्टर थे। वो पता है कैसे थे? भक्ति विद्वान में ओपीडी में पेशेंट आएगा ना, समझो कोई भक्त आ गया उसमें, तो पहले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः, ये करने के बाद उसको देखते थे। तो ओपीडी की लाइन खत्म ही होती नहीं थी। तुम लोग क्या हो रहा है, इतना स्लो क्यों देख रहे पेशेंट को? बाद में हमने उसका क्या किया ना, उसका रहस्य भेद किया, जाके उसका रिसर्च किया क्या हो रहा है। इनकी ओपीडी जल्दी खत्म नहीं होती, वाकई सबकी जल्दी खत्म हो जाती है, पेशेंट तो उतने रहते। बाद में पता चला कि सबको वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य प्रणाम कर रहे उनको, कि आप मुझे सेवा दे रहे हो, ये मेरा भाग्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसमें तो टाइम जाएगा ना थोड़ा सा, उसमें एक मरीज देख सकते हैं आप। लेकिन ये फिर उनको हमने समझाया, प्रभु जी मुंबई है, बहुत लाइन में खड़े लोग हैं, वो आप अभी थोड़ा दंडवत करना छोड़ दो उनको आप, और यहाँ पर सारे ब्रजवासी हैं, अभी भी सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके फिर चेकअप करते हैं। इतना परिवर्तन कैसे हुआ? भगवान नाम की वजह से, सत्संग की वजह से। तो आपकी जो पहली इच्छाएं हैं वो भी बदल जाएगी। तो बताओ स्वभाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, स्वभाव बदलना है तो भगवान का भक्त बनना है आपको, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। याद रखो इस बात को, आप कथा तो आप सुन ही रहे हो, अच्छा मनोरंजन भी हो रहा है, लेकिन ये बातें जो है ना वो हृदय की डिब्बी में बंद करके रखो, ये काम आएगी आपको आगे। क्या क्या इच्छा है बाकी अभी आपकी? यानी वे पब्लिक में नहीं बोल सकते, पता नहीं हृदय में क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या अभी क्या बताएं आपको। लेकिन हर एक व्यक्ति कम से कम खुद के मन में क्या क्या छुपा हुआ है, लड्डू पेड़ा जो भी छुपा हुआ है उसको जानते हैं ना आप लोग। प्रार्थना करो भगवान के नाम को, चेतो दर्पणम मार्जनम, हृदय स्वच्छ हो जाए, केवल आपकी जो आपके लिए जो इच्छा है, आपके प्रति जो इच्छा है वही रहे। दाय विल बी डन, मेरी इच्छाएं बहुत है लेकिन जो आपकी इच्छा है मेरे विषय में वही हो, और बाकी सब हरि बोल हो जाए। बोलो हरि बोल, लेकिन दिल से बोलना। हाँ, दिल से बोलना, क्योंकि अभी आप बोलेंगे यहाँ पर कल प्रभुष के तले बैठकर गरुड़ गोविंद के सहारे बोलेंगे, सब नष्ट हो जाए, बाद में बोलेंगे क्यों मैंने ऐसा किया, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब मैं प्रभावित होकर प्रभु जी के चक्र में आ गया, क्यों मैंने छोड़ा। नहीं, जो भी छोड़ते हैं ना वो भगवान, आप जितना छोड़ते हैं ना उसके हजारों गुना आपको वापस लौटा के देते हैं। प्लीज, भगवान को देने से किसी की कमी नहीं होती है। तो फल वाली आई थी, कुछ ऐसे सिंपल से फल लेकर आई थी, भगवान को देखकर इतना मोहित हो गई, सब बास्केट भर के फूल फल दे दिए भगवान को, इतना मोहित हो गई, घर गई 3 बार बास्केट लेके आए, भर भर के भगवान को फल दिए, कुछ बदले में लिया नहीं। उस समय चावल देते थे, कुछ भी लिया नहीं, बालक के हाथ में कितना चावल आएगा, लेकिन बालक के भाव से इतना प्रभावित होकर दे के आई सब अपना सर्वस्व, कल क्या खाऊंगी, कहाँ से धन आएगा, विचार नहीं किया उसने। कहते तीसरे दिन बाद उसकी फल की टोकरी में सारे जवाहरात, क्या कहते हैं, अलंकार भर गए पूरे। कितना दिया उसने भगवान को? कुछ फल दिए, हो गए, उसका उसका प्रॉपर्टी पूरा दे दिया। लेकिन भगवान ने इतना दिया कि 10 जन्म तक भी पूरा पड़ेगा उसको। इसलिए भगवान को देने से ना कभी नुकसान नहीं होता है। हम क्या करते हैं, भाई मेरे लिए कुर्ता लेने गया ना तो धड़ाधड़ 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर लेते हैं, और जन्माष्टमी का समय आएगा कितना दूँ, 1,000 दूँ कि 2,000 दूँ, उसी दिन शॉपिंग में गया तो उसी दिन भी 10,000 रुपये खर्च करके आएंगे। लेकिन जब ये चेक बनाने का समय आएगा 1,001 दूँ कि 1,151 दूँ, ऐसा हम करते हैं। भगवान के विषय में कंजूसी, इंद्रिय भोग के विषय में पूरी लिबर्टी, वो उल्टा होना चाहिए। और ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि भगवान को जब आप देंगे ना कभी आप भूखे नहीं रहेंगे। अरे जो व्यक्ति अपना सर्वस्व भगवान को दे रहा है उसको आप पालन पोषण भगवान क्यों नहीं करेंगे? वो तो हाथी को भी खिला रहे हैं, राक्षस को भी खिला रहे हैं, गुंडा को भी खिला रहे हैं, वो भक्तों को क्यों नहीं खिलाएंगे? भक्तों को क्या उपवास ही छोड़ेंगे? इससे को विश्वास रख के दिल खोल के भगवान को देना चाहिए। धन तो एक तुच्छ चीज़ है, लेकिन धन के साथ का दिल, भावना, भक्ति, विचार सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। काया वाचा मने भगवान के होना चाहिए। जब आप भगवान के हो जाते हो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, निश्चिंत रहो आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।